मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। जोहर श्रोताओं, महिला और संपत्ति का अधिकार अभियान की 5वीं कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले कई हफ्तों में आप लोगों ने इस विषय में कई प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो कि काफी सराहनीय है। आप लोगों की तरफ से यह अनुरोध मिला कि महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार कैसे मिल सकता है, क्या इसके लिए कोई कानून है। तो श्रोताओं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम यह जानना चाहते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कैसे मिल सकता है, क्या इसके लिए महिलाओं को जागरूक और शिक्षित होना पड़ेगा, क्या और बेहतर कानून की आवश्यकता है, और क्या उन्हें दहेज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।
सरस्वती, क्या तुम ये बता सकती हो कि भारत का संविधान महिलाओं को किस तरह से अधिकार देता है?
जरूर अमित, देखो भारत का संविधान में महिलाओं को केंद्रित करते हुए ऐसा कानून बनाया गया है जिससे महिलाओं के अधिकार की रक्षा हो सके। संविधान न सिर्फ महिलाओं को समान अधिकार की वकालत करता है, बल्कि हर राज्य को यह अधिकार भी प्रदान करता है कि महिलाओं के पक्ष में राज्य सकारात्मक भेदभाव के उपायों को लागू करे। भारतीय संविधान महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है, जैसे अनुच्छेद 14 महिलाओं के लिए कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 का राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, चाहे वह कोई भी जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म का स्थान या धर्म का हो। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान कर सकती है।
सरस्वती, ये बताओ कि संपत्ति में अधिकार कैसे लागू किया जा सकता है?
जरूर अमित, देखो यह जरूरी नहीं है कि संपत्ति में अधिकार उस समय लिया जाए जब कोई विवाद या परेशानी हो, बल्कि यह हर समय लागू होना चाहिए। जैसे संपत्ति का हस्तांतरण हो, या संपत्ति से संबंधित कोई फैसला लेना हो, या संपत्ति का इस्तेमाल हो। इसलिए संपत्ति में अधिकार के बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है।
ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनसे महिलाओं को अधिकार मिल सकता है?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार कोई भी अविवाहित लड़की को अपनी पैतृक संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि एक लड़के को। शादी के पश्चात लड़की का पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं रहता है, लेकिन अगर वो किसी कारणवश विधवा या अपने पति से अलग रह रही हो तो उसे अपने पैतृक घर में रहने का हक है। इसी तरह से विधवा और उसके बच्चे को भी अपने पति के संपत्ति पे पूरा अधिकार है। विरासत नागरिक कानून के अंतर्गत आता है और इसमें कोई भी महिला अपने संपत्ति में अधिकार पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार वो कोर्ट में अपना अर्जी भी दाखिल कर सकती है। भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह सिफारिश किया है कि जितना भी जमीन का बंटवारा होती है उसमें 60% परिवार के महिला और पुरुष के संयुक्त रूप में होना चाहिए। भूमि संबंधित कानून लागू करने में राज्य सरकार का अहम भूमिका होता है, इसलिए यह जरूरी है कि जमीन से संबंधित कानून में कोई भी बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए।
अच्छा सरस्वती, ये बताओ कि संपत्ति में अधिकार दिलाने में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं?
देखो अमित, संपत्ति में अधिकार दिलाने में यह सारे लोग शामिल हो सकते हैं। सामुदायिक अधिकार कार्यकर्ता, समुदाय के सदस्य, परंपरागत और धार्मिक नेता, स्थानीय परिषद न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय और सरकारी निकाय।
और ये बताओ कि संपत्ति की विरासत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
संपत्ति की विरासत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को भूमि अधिकार सिर्फ विरासत के माध्यम से ही मिलती है। तो श्रोताओं, अमित को जो जानकारी मैंने अभी अभी दिया उसके बारे में आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार कैसे मिल सकता है? क्या इसके लिए उन्हें शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा? आइए अब जानते हैं झारखंड मोबाइल वाणी के श्रोताओं का इस बारे में क्या राय है।
तो झारखंड मोबाइल वाणी के लिए मैं गिरिडीह से राजेश कुमार, हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ की सचिव श्रीमती कंचनमाला है। आज महिलाओं को संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पर वो अपना प्रकाश डालेंगे। श्रीमती कंचनमाला,
दरअसल देखिए, हम लोगों का जो संपत्ति का अधिकार जो कानून बना था 1956 में बना, लेकिन उस को कारगर नहीं हो पाया, इसके पीछे सारी वजह हम बेटियों को उनका अधिकार देना नहीं चाहते। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं है, उनको अपने अधिकार की जानकारी भी नहीं है। और दूसरी बात है कि महिलाओं को उनके अधिकार से जानबूझ करके वंचित रखा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि पुरुषों को उनका संपत्ति अधिकार देना सही नहीं लगता है, इसीलिए देने में भी उनको हिचकिचाहट होती है और महिला मांगने पे भी जाती है। तो नहीं चाहती है कि उसका अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने पिता से, अपने नैहर वालों से उसका संबंध खराब हो, इसलिए भी वो नहीं मांगना चाहती है। लेकिन मेरा कहना, मेरा मानना है कि जब उनको ये अधिकार दिया गया है तो उसको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और जो भी उनका अधिकार है उसको उनको लेना चाहिए।
मैं अनंत कुमार राय, झारखंड मोबाइल वाणी राजमहल से। मेरे साथ है बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट सुखदेव नारायण अग्रवाल जी। वो बताएंगे महिलाओं को प्रॉपर्टी में, ट्राइबल लॉ में इनको प्रॉपर्टी में क्या कुछ राइट है और क्या होना चाहिए।
पंथाल सगना सप्लीमेंट्री फिनेंसी प्रोविजन एक्ट 1949, इस एक्ट में पंथाल में औरतों को या बच्चियों को कोई भी हक नहीं है। जब किसी बच्ची को हक है जिसकी शादी घर जमाई रीति से हुई है या फिर उसके पिता माता किसी एक लड़की को बुढ़ापे में अपने घर अगुमित फॉर्म ऑफ मैरिज में ले आते हैं घर में, और तब उसका जो जमाई है उस जमाई को अपने ससुर की संपत्ति पाने का हक है, और नहीं तो संथाल लॉ इनहेरिटेंस कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है और औरतों को एक जीनिस माना गया है, जीनिस एक आर्टिकल माना गया है। इस कंसेप्ट को जब तक चेंज नहीं करेगा बाय लेजिस्लेशन कि वुमेन आर नॉट जीनिस, तब तक औरतों को हक दिलाना कानून के तहत कठिन होगा। धन्यवाद।
झारखंड मोबाइल वाणी के लिए देवघर से मैं केवी सहाय बोल रहा हूँ। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संतलाल जी हैं। ये बताएंगे कि संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है।
महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में काफी प्रताड़ित होती है, और जब वह पिता के यहाँ से ससुराल जाती है तो वहाँ भी उनकी संपत्ति का जो मालिकाना हक होना चाहिए, संवैधानिक रूप से उनके नाम पर दर्ज होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पर भी वे प्रताड़ित होती हैं और विषम परिस्थिति में वे अपने संपत्ति का उपयोग अपने हक में नहीं कर पाती है और वह नगण्य हो जाती है। इसलिए महिलाओं को संवैधानिक रूप से जैसे उसका जमीन है, घर है, आवास है, इस पर कानूनी हक मतलब पति के साथ साथ उनका भी नाम दर्ज होना चाहिए खतियान में, ताकि वह उसका उपयोग विशेष परिस्थिति में कर सके और उसको वे मतलब जैसे उसका पति अगर कहीं प्यांक हो गया तो वह उसको बेच लेता है, पत्नी उसको रोक नहीं पाती है। इसलिए जब उनका नामांतरण उसमें हो जाएगा, उसका नाम उसमें जुड़ जाएगा उस संपत्ति में, तो वह उस पर प्रोटेक्शन कर सकती है, रोक सकती है और समाज में उसको एक बहुत बड़ा परिवर्तन का लहर सामने आएगा। इसलिए मैं खास करके कहती हूँ कि महिलाओं का जैसे अस्थाई संपत्ति है या उस पर उसका हक कानूनन जुड़ जाना चाहिए, जो कागज अंचल ऑफिस में बनता है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बनता है उसमें उसका नाम भी उस संपत्ति पर दर्ज हो जाना चाहिए।
तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको इस अभियान की 5वीं कड़ी? अपना प्रतिक्रियाएं देने के लिए दबाएं नंबर 3। आपकी प्रतिक्रियाएं में से सबसे बेहतरीन प्रतिक्रियाओं को हम अपने अगले कड़ी जो कि सोमवार शाम 8 बजे आएगी उसमें प्रसारित करेंगे।
आइए अब सुनते हैं उनके नाम जिनके आइटम्स पिछले कड़ी में हमने प्रसारित किया है।
लक्ष्मण कुमार निमिया डी चंदन क्यारी बोकारो से, प्रतीक कुमार सरिया गिरिडी से, हरेंद्र कुमार चैनपुर पलामू से और गोपाल कुमार चंदन क्यारी बोकारो से। इन सबको झारखंड मोबाइल वाणी की तरफ से धन्यवाद और सुनते रहें झारखंड मोबाइल वाणी।